एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर,
स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर।
गगन में आज घोर संकट के बादल छाए, ईर्ष्या देश के दावानल में जग यह जलता जाए,
जग यह जलता जाए।
शक्ति संगठन में होती है जाने दुनिया सारी,
जाने दुनिया सारी।
करे पैदा हम में जो बुझा दे वो चिंगारी,
बुझा दे वो चिंगारी।
एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर,
स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर।
ओम शांति। एक विदेश का मनोचिकित्सक अफ्रीका के जंगल में जाता है, उसे खोज करनी होती है, स्टडी करनी होती है, रिसर्च करना होता है उन आदिवासी बच्चों का, उनके शिक्षा के स्तर का, क्या स्तर है उनकी शिक्षा का। इस लक्ष्य से एक साइकोलॉजिस्ट अफ्रीका के जंगलों में जाता है। घने जंगलों के बीच एक गांव, ऐसा गांव कि जो संसार से कट किया हुआ है, वहां क्या हो रहा है संसार को पता नहीं, और वहां जो लोग रहते हैं उन्हें यह पता नहीं कि मेनस्ट्रीम में क्या हो रहा है। एकदम पिछड़े आदिवासी, वहां वो मनोचिकित्सक जाता है और बहुत दुख होता है यह देखकर कि ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई शिक्षा नहीं, कोई शिक्षा का विकास नहीं, किस दरिद्रता में ये लोग जी रहे हैं, संसार कहां के कहां पहुंच गया है, शिक्षा का क्या स्तर है बाहर, और ये लोग वहीं पर है। इन बच्चों का क्या होगा, वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए उसे नजर आते हैं, बहुत उसको दर्द होता है, दुख होता है यह देखकर। अपने रिसर्च में वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक प्रयोग अपने अनुसंधान में, कि वहां खेल रहे सभी बच्चों को वो एकत्र करता है और सोचता है इनको कुछ सिखाना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन क्या होता है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इनको मैं सिखाऊं। तो वो उन सभी बच्चों को एकत्र करता है, लगभग 100 बच्चे होते हैं, और उनको कहता है अभी हम लोग एक रेस करेंगे, आप सबको रेस करनी है, सब एक तरफ, और कहता है सामने जो दूर जो झाड़ रखा हुआ है, झाड़ खड़ा है, उस झाड़ के पास बहुत सारी मिठाइयां और टॉफी रखी हुई है, खाने की अच्छी अच्छी चीजें। यह रेस ऐसी होगी कि तुम यहां से भागो और जो भी फर्स्ट आएगा उसको वो सारी टॉफियां, सारी मिठाइयां, जो मिठाइयों के थाल सजे हैं वो सब मिलेंगे। टेम्पटेशन देता है बच्चों को, तो सारे बच्चे भागना चालू करते हैं और उसे आश्चर्य होता है, ही इज शॉक्ड, ये देखकर ये कैसे भाग रहे हैं। सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक साथ भाग रहे हैं, जबकि कहा गया था कि तुमको रेस करनी है, जो फर्स्ट आएगा उसे टॉफी मिलेगी, और सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागना चालू करते और सबके सब फर्स्ट आ जाते हैं। वो उनको पूछता है आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वो लोग अपनी भाषा में चिल्लाने लगते उबुंटू 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 उबुंटू। वो कहता है इसका मतलब, वो कहते हैं हम, मैं हूं क्योंकि हम है, वी आर, आई एम बिकॉज वी आर। वो उनको शिक्षा सिखाने जाता है वहां पर, ये सिखाने जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन कहां तक पहुंचा है। वो बच्चे ही उसे एकता का पाठ वहां पढ़ा देते हैं कि हम ये सहन नहीं कर सकते कि हमारा कोई साथी पीछे रह जाए, हम आएंगे तो सब साथ साथ। उबुंटू उबुंटू उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्यों मैं हूं क्योंकि हम सब हैं, इसलिए मैं हूं, अगर ये सब भी नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। एक एक मिल उतार देंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, चलो चले परिवर्तन पथ पर, कदम से कदम बढ़ाकर। तो आज हम एक और एक ग्यारह कैसे इसकी चर्चा करेंगे। संगठन में बल है, संगठन में शक्ति है, ज्ञानी को ज्ञानियों के संग में रहना चाहिए, योगियों को योगियों के संग में रहना चाहिए। जब जब हम संग में संगठन में किले के अंदर रहेंगे तो विकर्म नहीं होंगे, जैसे ही किले को छोड़कर बाहर जाएंगे पाप विकर्म कुकर्म कुछ ना कुछ होगा। जो किले के अंदर रहता है सुरक्षित रहता है, लड़ाई माया से है, माया बहुत शक्तिशाली है, केवल शक्ति ही नहीं माया महा ठगनी हम जानी, बहुत चालाक है दुश्मन, बहुरूपी है, पल पल अपना रूप बदलती है, वो रूप नहीं है उसका जो कल था, आज दूसरा है, शाम को दूसरा होगा। रावण कभी रावण के वेश में नहीं आता है, किसका रूप धारण करता है, सीता का हरण करने के लिए, साधु। रावण श्वेत वस्त्र और बैच भी लगाता है, इसलिए पहचानना तो और ही मुश्किल है। भोजन भी वही ब्रह्मा भोजन, और शक्तिशाली है, उसके मस्तक पर लिखा नहीं होता है मैं रावण हूं। अकेले लड़ सकते हैं परंतु एकता में बल है, संगठन में बल है, हम जींस का जो संगठन होगा उसमें बल होगा। सबका लक्ष्य जहां संपन्न बनने का है, संपूर्ण बनने का है, श्रेष्ठ बनने का है, फरिश्ता बनने का है, महान बनने का, अगर उनका संग मिल जाए तो हो भाग्य। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा मम प्रसाप मम कथा प्रसंगा। राम ने शबरी को नवदा भक्ति सुनाई, उसमें प्रथम भगति कर संतन कर संगा, संत का संग करना ये पहली भक्ति है। महान आत्माओं का संग करना, योगियों का संग करना, दूसरी मम कथा प्रसंगा, जो मेरी कहानी है, जो मेरे वचन है, जो मैंने सुनाया है वह सुनना, ये दूसरी भक्ति बताई है। तो स्वयं को संगठन के सूत्र में बांध के रखना है, सुरक्षा है। सिक्योरिटी है, सुरक्षा कवच है संगठन। जैसे ही संगठन से आत्मा बाहर जाती है, कुछ ना कुछ होता है प्रभाव। और ऐसा जब संगठन हो उसमें तो जरूर आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सारी महान आत्माओं का संगठन, कितने पवित्र वाइब्रेशन सबके। आत्मा यदि उदास है, दुखी है, कोई निगेटिव प्रभाव में है, ग्रहचारी है, ऐसे संगठन में आते ही उमंग उत्साह फिर से जागृत होता है। इसके लिए जब जब भट्टी हो, जब जब सेवा केंद्र पर कोई प्रोग्राम हो, भले हम उसमें कुछ ना कर रहे हो, कोई सहयोग भी नहीं दे रहे, परंतु केवल आकर बैठना, मन का मौसम बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मन का मौसम। दुख का मौसम जो है वो रूपांतरित होगा, वसंत आ जाएगा। यदि इस संगठन में इतना बल है, एक एक ईंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ के किले की तुम ईंट हो, बाबा के महावाक्य है। और इस किले से यदि एक आत्मा भी बाहर जाती है, जिम्मेवारी मेरी है। एक वरदान में बाबा ने कहा था, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट हो इसमें कि कोई भी आत्मा यहां से बाहर ना जाए, जाने की कोशिश करे और शॉक लगे और अंदर। ऐसा योग का वाइब्रेशंस, योग का इलेक्ट्रिक करंट, योग की वाइब्रेशंस की इलेक्ट्रिसिटी इस यज्ञ के इर्द गिर्द फैला दो। किसी के मन में संकल्प ना आए, कोई कुछ निगेटिविटी देखकर इतना उदास हो गया और यहां किसे छोड़कर कहीं और जाने का सोच रहा है, यहां से जो कभी भी जाएगा उसको कभी भी चैन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अंतिम लास्ट स्टेशन है। जो यहां से जाए और जितने गए वो सभी दुखी है, उदास है, क्योंकि उन्होंने यहां पर कुछ तो अनुभव किया है, चाहे बाद में कितना ही निगेटिव हो गए, परंतु अनुभव है। और वो अनुभव उनको खींचता है, वो परमात्मा प्रेम खींचता है। अंतिम हट्टी यही है, इससे कोई बाहर डिस्टर्ब होकर ना जाए। और वो यदि मैं हूं, मेरे कारण यदि डिस्टर्ब होकर कोई जा रहा है तो ये बहुत बड़ा बोझ है। मेरी ऐसी कोई चलन को देखकर, मेरे शब्द को सुनकर मैं किसी के साथ ऐसा ना बोल दूं कि वो इतना घायल हो जाए, उदास हो जाए, निगेटिव हो जाए और सोचे कि बस हो गया, बहुत हो गया ब्रह्मा कुमारी। इसके लिए हमें इस संगठन को शक्तिशाली बनाना है। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। हम सब है, मैं हूं क्योंकि हम सब है। क्या हम करें? जो एक और एक ग्यारह निरंतर रहे, क्या हम करें कि यह संगठन, ये परमात्मा संगठन है। कितनी अव्यक्त वाणियां हैं जिसमें बाबा ने कहा है, आज बाप दादा ब्राह्मण आत्माओं का संगठन देख हर्षित होते हैं। एक एक ये है, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, मुरलियों में अलग अलग आते रहता है। अव्यक्त वाणियों का फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है? उसमें क्या होता है? कोई भी अव्यक्त वाणी का फर्स्ट पैरा, पहला अनुच्छेद क्या होता है उसमें? तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम याऊं हो, तुम त्याऊं हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, बाप दादा मस्तक पर ये देखा, गाल पर ये देखा, नाक में ये देखा, होठों पे ये देखा, हाथों में देखा, पैरों में देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऐसे ही होता है ना। आज सुप्रीम कमांडर अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कैसी कैसी मुरलियों की शुरुआत होती है, एक अव्यक्त वाणी है, आज ज्ञान सागर बाप, लिख के रखो, आज ज्ञान सागर बाप अपनी हजारों गंगाओं में नहाने के लिए आया है। कैसा वाक्य है, नशे वाला है ना। सागर आया है नदियों में नहाने के लिए। संगठन के किले को मजबूत करने के 10 सूत्र। संगठन के इस किले को यदि हमें मजबूत शक्तिशाली बनाना है, उसके 10 सूत्र क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। संगठन को अंग्रेजी में कहते हैं गैदरिंग। 9 शब्द है। इसी के आधार से वो कौन सी 10 बातें या 10 सूत्र है जो इस संगठन में होने चाहिए, चाहे लौकिक घर का संगठन, ऑफिस का संगठन, सेवा केंद्र का संगठन, एक सेवा केंद्र और दूसरा सेवा केंद्र उनका संगठन, या मधुबन का संपूर्ण संगठन, या फिर मधुबन और सारे सेवा केंद्र का संगठन, या फिर सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक संगठन। इसके 10 सूत्र क्या हम करें कि ये किला अभेद हो जाए। शत्रु आ ना सके, सत शत्रु की कोई चाल चल ना सके, ऐसा अभेद दुर्ग फोर्ट। इसके लिए सबसे पहली बात जी, जो नहीं करनी है और वो सबसे ज्यादा की जाती है। एक ऐसा खेल जो संसार में सबसे ज्यादा खेला जाता है कौन सा है, माताओं को बताने दो पीछे की माता, ऐसा कौन सा खेल है जो सबसे ज्यादा खेला जाता है। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, सबसे ज्यादा गेम कौन सा खेला जाता है संसार में। ब्लेम गेम, गेम ऑफ ब्लेम, दूसरों को दोषी ठहराना, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुम्हारी वजह से सारी सेवा बिगड़ गई, बिल्कुल मत आना अगली बार से, पहले ही बोला था इसको मत लो, फिर भी माना नहीं और इसको लिया, देखा डिससर्विस हो गई ना, इसकी वजह से हुआ। एक उंगली उधर, 3 इधर, ऊपर से खुदा देख रहा है, ऐसा है। एक उधर, 3 इधर और ऊपर खुदा। आरोप लगाना, दोषी ठहराना। एक व्यक्ति ने एक बार गांव में कोई बड़ा अपराध हो गया, कोई चोरी या इस तरह का, और एक व्यक्ति पर दोष थोप दिया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में गया, सजा हो गई, और जब सजा सुनाई गई उसी समय जो रियल अपराधी था वो आ गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर तब तक जिस पर अपराध दोष लगा था सब जगह उसकी निंदा, ग्लानी, सब कुछ हो चुका था। तो जज साहब ने उसको बरी कर दिया और ये जो व्यक्ति था जिसने अपराध लगाया था, दोष लगाया था, ब्लेम किया था उस व्यक्ति को, उसने कहा अब मैं क्या करूं, सॉरी। तो जज ने कहा सॉरी से नहीं होगा। तो वो पूछता मैं क्या करूं अब, तो जज उसको बहुत सारे पंख देता है, पंख पता है, पंख, पंख के पीसेस, और कहता है ये जो पंख है अब इसको उखाड़ उखाड़ के सारे गांव में फैला दो। वो जाते जाते सारे पंख के टुकड़े सारे गांव में फैला देता है। दूसरे दिन जज के सामने जाता है तो जज कहता है अब जाकर वो सारे पंख वापस लेके आओ। आ सकते हैं, वैसा ही ब्लेम है। ब्लेम करना, तुम्हारी वजह से, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, हमको तो पहले ही पता था ये इसी ने किया होगा। मजा आता है ना ऐसे करने में, पत्रकार लोग करते हैं ऐसा। जिस संगठन में ब्लेम गेम हो रहा है, क्या वो संगठन फूलेगा फलेगा शक्तिशाली होगा? जहां सभी एक दूसरे को आरोपित करते हैं, सभी ब्लेम करते हैं, अक्यूज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपोज करते हैं, गिराते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, पीछे से छुरा घोंपते हैं, सारे धर्मों का क्या हाल हुआ? द्वापर से जितने धर्म आए, एक एक धर्म डिवाइड होते गया। इस्लाम, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, बुद्धिज्म, हीनायान, महायान, सभी धर्म टुकड़े टुकड़े डिवाइड होते गए। श्वेतांबर, दिगंबर डिवाइड होते गए, डिवाइड, डिवीजन में भी सब डिविजन्स, मतभेद। क्या बाबा को खुशी होगी ये भी संगठन डिवाइड हो जाए? कोई कहेगा हम डायरेक्ट ब्रह्मा को फॉलो, हम शिव बाबा को फॉलो करने वाले, दूसरे कहेंगे नहीं हम खाली ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, तीसरे कहेंगे हम दोनों को मानते हैं, ऐसे तीन। भगवान ऊपर से खुश होगा? ये खेल बहुत खराब और जबरदस्त नरक की ओर लेके जाने वाला है। हमें सबको समाना है, चाहे कोई कैसा भी हो। बाप अव्यक्त महावाक्य के इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी में नौ अवगुण है और एक गुण है तो बाप उस गुण को देखता है, और तुम बच्चे यदि किसी में दस गुण है और एक अवगुण है तो तुम किसको देखते हो? उस अवगुण को देखते हो। चाहे कोई कैसी भी आत्मा है इस ब्राह्मण परिवार में, उसमें तीन चीजें तो है ही है। कौन सी? एक तो उसने भगवान को पहचान लिया, बड़े बड़े शंकराचार्य, इमाम, पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर, अवतार, धर्मस्थापक, जैन गुरु, बुद्धिस्ट गुरु, जो उसको पहचान नहीं पाए उसको इसने पहचान लिया। अब जानंती माम मुड़ा, हे अर्जुन मैं साधारण वेश में संसार में आता हूं, मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। अवजानंती, वो मुझे जानते नहीं, माम मुड़ा, वो मूढ़ है, वो मूर्ख जान उनको। उसने पहचाना तो सही ना, एक। दूसरा, पवित्रता को धारण तो किया, उसमें कितने ही अवगुण हो पर पवित्रता को तो धारण किया है। और तीसरा, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी ना किसी रूप से स्वयं को परमात्मा के आगे समर्पण किया है। चाहे कोई कितना भी अवगुण वाला हो, उसमें ये तीन तो चीजें है ही है। जो यहां का लास्ट बच्चा है वो भी बाहर वालों से आगे है, बाबा के महावाक्य है, और हम उसके अवगुण देख रहे हैं। क्या अवगुण देख रहे हैं? कि वो योग में सो रहा था, इसके लिए हमको बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलता ज्यादा है, वो कभी कभी झूठ भी बोलता है। स्टॉप द ब्लेम गेम। इस किले को शक्तिशाली बनाने के लिए इस ब्लेम गेम को बंद करना पड़ेगा। पहला जी, दूसरा ए, ए फॉर एप्रिसिएशन। महंगाई हो गई है स्तुति की, प्रशंसा की, मुख नहीं करना चाहता, ऐसा लगता है हम छोटे हो जाएंगे, इसकी ज्यादा महिमा कर दो तो अपने स्टेटस में खतरा है। सबकी महिमा, सब महान है, सब श्रेष्ठ है, खुले दिल से महिमा, जैसे बाप सबकी महिमा करता है। यदि बाबा के सामने कोई टेररिस्ट आ जाए, ठीक है, अव्यक्त बाप दादा बैठे हैं बंदूक लेकर, तो बाबा क्या कहेंगे? डांटेंगे? डांटते हुए देखा क्या कभी अव्यक्त बाप दादा को? गुस्सा करते हुए? प्रेम का सागर है, चाहे सामने कैसी भी आत्मा आ जाए, दोष नहीं उसके देखेंगे। एप्रिसिएशन के गुण को बढ़ाना है, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। जितनी हम स्तुति करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे, उतना ही उस आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम चाटुकार बन जाए, फ्लैटरी। सच्चे दिल से की हुई स्तुति, किसी ने महान श्रेष्ठ कार्य किया है, सेवा की है, स्तुति करो तो उसका उमंग और बढ़ेगा। किसी ने कोई कुछ कुछ मां बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे कितना भी अच्छा कर लेते हैं फिर भी खुश नहीं होते हैं, फिर ताया तो दुखी है क्योंकि फर्स्ट नहीं आया। फर्स्ट आया तो लास्ट टाइम फर्स्ट आया तो ज्यादा मार्क्स थे, अभी तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट है पर परसेंटेज कम है, उसको कभी खुश होने ही नहीं देते। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। संगठन में क्या चाहिए? एक दूसरों की महिमा करनी है। क्या क्या महिमा करेंगे एक दूसरों की? क्या महिमा करेंगे? क्या महिमा करेंगे जनरल में? क्या महिमा करेंगे? तो क्या महिमा करेंगे उसकी? क्या महिमा करेंगे? कुमारियां, कोई दूसरा मिल जाए तो क्या महिमा करेंगे उसकी? कोई दूसरी कुमारी मिल जाए तो क्या क्या? आप बहुत ही अच्छे हो, आप रेगुलर क्लास में होते हैं, आप जैसा योगी तो मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं। आपको देखकर ही लगता है कि कोई योगी है, जरूर पिछले कई जन्म तक पवित्र रही होगी। आपकी चलन बहुत अच्छी है। गुण लिखना बड़ा मुश्किल काम है। 5 गुण यदि किसी के लिखने बोल दो तो सोचना पड़ता है क्या लिखूं, कुछ है भी या नहीं है, और कहां अवगुण, फटाफट 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 10 तो ऐसे लिख दिए कि बस जैसे टिप ऑफ द टंग, फटाफट अवगुण लिख दिए। जोर से बोलता है, हंसता जोर से है, योग तो बिल्कुल नहीं है, अमृत वेला तो कितनी बार सोते हुए देखा, मुरली तो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, और ट्रैफिक कंट्रोल तो कभी आज तक देखा नहीं, खाने में तो इतना रस है कि जब देखो तब खाऊ खाऊ, सोने को बोलो तो अभी सो जाए और चले योगी बनने। 10 फटाक से लिखती है। अभी कहा कि गुण लिखो, गुण बाबा को पहचाना बस यही है, गुण दिखाई दे रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं दिखता है। कितना ढूंढू, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा क्या है गुण। अज्ञान में थे तो गाते थे भगवान के आगे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ज्ञान में आ गए तो इन निर्गुण हारों में, ये जो ब्राह्मण परिवार है इनमें कोई गुण नहीं, कोई गुण ही नहीं दिखाई देता। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। आप योग बड़ा अच्छा कराते हो तो उसको भी आएगा, जो नींद करते देखे तो उसको कहना कि तुम योग बहुत अच्छे लगते हो योग करते समय, तो वो और अच्छे से करेगा। जो चीज की कमी है वही कह देना ये बहुत अच्छा है। एक भाई योग करता था ऐसे नीचे नीचे पूरा जमीन पे लगता था, क्या कर रहे हो? सकाश जमीन को सकाश दे रहा हूं। कोई सोया है, ए उठो मैं जागा हूं उससे जाके पूछो कि क्या किया जाए, मुझे बहुत नींद आती है, तो वो बताएगा। उसको जाके पूछो जिसको आती है, और कहो कि मुझे आती है, कुछ बताओ राय, तो उसका भी कल्याण होगा। बताते बताते सिखाते सिखाते खुद सीख जाएगा। दूसरा, उसके बाद टी फॉर ट्रस्ट, विश्वास। संबंध की आधारशिला विश्वास है। जिस संबंध में अविश्वास होता है, संदिग्ध होते हैं, डाउट होता है, सस्पिशन होता है, पति को शक है, पत्नी को शक है, शक का कोई इलाज? सारे प्रमाण पत्नी के सामने रख दिए जाए, शक का कोई इलाज? मुश्किल है। एक ऐसा ही एक चुटकुला है, इतना अच्छा तो नहीं। एक पति पत्नी को शक हो जाता है अपने पति पर, जरूर कुछ है, क्योंकि कोर्ट पर एक बाल दिखा, कुछ तो चल रहा है, तो रोज चेकिंग करती है, और एक दिन एक भी बाल नहीं दिखता है, तो परेशान होती है। वो कहती है, नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग विथ बाल्ड वुमन, ट्रस्ट, विश्वास। सृष्टि का नियम विश्वास का नियम है। जब विश्वास ही नहीं हम में, विश्वास रखो, करेगा वो। ये नहीं कहते ये इससे तो होगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं। हम पे भी तो किसी ने विश्वास किया था, तभी तो हम कर सके। हम बिल्कुल नए थे, फिर भी हम पर विश्वास किया गया और हम आगे बढ़े। वैसे वो भी नए हैं, उन पर भी विश्वास करो और वो सीखेंगे, उन्हें भी सिखाना है विश्वास। इस संगठन में, संपूर्ण यज्ञ के संगठन में आपसी विश्वास हो, ट्रस्ट, लर्न टू ट्रस्ट। जस्ट एज आई हैव केप्ट माई फेथ अपॉन यू, यू कीप योर फेथ अपॉन अदर्स। जैसे मैंने तुम पर विश्वास किया है, तुम भी विश्वास करो। द लॉ ऑफ फेथ। परंतु ऐसा विश्वास नहीं कर दो कि जिसमें विश्वासघात हो जाए। परख कर, समझ कर, बुद्धि से, परंतु आपसी एक स्नेह का संबंध और विश्वास का संबंध हमेशा हो। घर में भी एक दूसरे पर विश्वास, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, मां का बेटों पर, बच्चों पर, परिवार में, नहीं तो संसार परिवार बिखर जाता है। ई, एनकरेज अदर्स टू मूव अहेड। दूसरों को प्रोत्साहित करना आगे जाने के लिए, तुम आगे बढ़ो। दूसरों के आगे जाने में ही हम आगे बढ़ते। ऐसे नहीं कि मैं ही करूंगा सब कुछ, हमेशा मुझे ही करना है, मैं इंचार्ज हूं। डिवाइड योर वर्क, सबको समान काम दे दो, सबको खुशी हो जाए, उनको भी लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं। हमेशा नहीं हम ही पकड़ के बैठे अपनी सीट को, सबको दो, इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो, सबको लगे, सब इन्वॉल्व हो जाए उस एक्टिविटी में, उस सेवा में, उस सर्विस में, सबका पार्टिसिपेशन हो। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अपनी सीट को पकड़ के नहीं रहना है, कोई छीनेगा नहीं। दूसरों को आगे बढ़ाने में ही हम आगे बढ़ेंगे। अवसर, चांस दूसरों को भी दो। हम तो कर ही रहे, अब दूसरों को भी चांस दो। हर चीज का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का हम करें, परंतु जब अवसर आए इस तरह का, तो दूसरों को आगे बढ़ाना। संगठन में ये गुण है एनकरेजिंग अदर्स का, जो संगठन को शक्तिशाली बनाएगा। अगला, एच, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रांसपेरेंसी हो दो व्यक्तियों के बीच में, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी, किसी को कुछ छिपाना ना पड़े। जिस घर में हर एक छिपाता है कुछ कुछ दूसरे से, वो घर संगठित नहीं रह सकता। ट्रांसपेरेंसी, सीक्रेट ऐसे रिलेशनशिप्स बना के नहीं रख देने हैं जो दूसरे से छिपाने पड़े। सीक्रेट टॉक्स, किसी के हाथ में मोबाइल आ गया तो चिंता हो गई, अब वो पढ़ ना ले मैसेजेस, पता नहीं याद नहीं आ रहा है डिलीट किया था कि नहीं किया था। पारदर्शिता, ऐसी ईमानदारी हमारे संबंधों में हो, घर में हो, संगठन में हो, सब जगह हो, ऑफिस में भी हो। ऐसे नहीं कि झूठ बोलने की इतनी आदत ही हो गई है, हर बात बात में झूठ और सहजता से झूठ। ईमानदारी को लाना है। बाबा को वो बच्चे पसंद है जो सच्चे हैं, जो छिपाते नहीं, जो है वो बोल दो ये है। जितना छिपाएंगे बीमारी और बढ़ेगी। दो व्यक्तियों का संबंध, दोनों आपस में कुछ ना कुछ छिपाते हैं, छिपाते हैं, छिपाते हैं, छिपाते हैं, डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, खुशी नहीं रहती है। तो एच, उसके बाद आर, आर से दो है, एक है रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान देना। सम्मान पाने की विधि क्या है? देना। बाबा देखो कैसे सम्मान देता है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम बच्चों को सलाम करता है, वंदे मातरम, योर ओबीडियंट सर्वेंट। बाप बच्चों से भीख मांगता है, बच्चे पवित्र बनो, साकार महावाक्य है बाबा के। बाप बच्चों से भीख मांगता है, हे बच्चों सा पवित्र बनो, विकार का मार्ग छोड़ो। आप कहना और नाम के आगे जी लगाना, चाहे कोई भी हो, भाई नहीं भाई जी, बहन नहीं बहन जी, माता नहीं माता जी। छोटा भी हो तो भी भाई जी, छोटी कन्या भी हो बहन जी, रिस्पेक्ट, एक दूसरों को आपसी सम्मान देना, किसी को नीचे गिराने की तरह बात करना, सम्मान नहीं मिलेगा, दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। संगठन में क्या हो? रिस्पेक्ट। एक दूसरा शब्द हमने लिखा है वहां पर, रेजिलियंस, अंग्रेजी शब्द है पर बहुत अच्छा शब्द है, विदेशियों के बहुत सारी क्लासेस इस एक शब्द पर होती रहती है। रेजिलियंस अर्थात लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। टाइट होके नहीं बैठना है, हम तो ऐसा ही है, हमारा तो वैसा ही है, हमारा तो वैसा ही, देश काल परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति टाइम प्लेस एंड पर्सन अनुसार हमको बदलना होता है। बहुत सारी चीजों को पकड़ के नहीं रखना है, ये तो ऐसा ही है हम ऐसा ही करेंगे, हमने माना था ये ऐसा है, हमने उसके विषय में ऐसा ही सोच के रखा कि यह ऐसा ही है, ये झूठी बोलता है, 10 साल पहले हमने सोचा था, अब तक पकड़ के रखा है, वो बदल गया है, आगे बढ़ गया है, पर हम अभी तक वही पकड़ के हैं कि वो ऐसा ही है। फिक्स्ड आइडियाज, ये एक। और दूसरा, धारणाओं में स्थिर रहना ये बहुत अच्छी बात है, परंतु हम लचीले भी रहे, फ्लेक्सिबल, मोल्ड करने वाले रियल गोल्ड बनेंगे। वो मोल्ड करना अर्थात रेजिलियंस, वो मोल्ड करना अर्थात लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। संगठन में क्या हो? एक कहे कि कमरे में दूसरे 3 लोग हैं, वो कहेगा कि मुझे लाइट बंद चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं रात में मुझे बाबा का लाइट चालू चाहिए, एक कहेगा खिड़की खुली, दूसरा कहेगा खिड़की बंद। एक पुल है, दो व्यक्ति बहुत जबरदस्त दुश्मन, एक ही व्यक्ति एक साथ गुजर सकता है, दोनों अपना गधा लेकर आते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं, वो कहता है तुम हटो, वो कहता है तुम हटो, वो कहता है मैं भी नहीं हटूंगा, दोनों अपना अखबार खोल के बैठ जाते हैं पढ़ने। थोड़ी देर के बाद कहते हैं अगर तुम्हारा पढ़ के होगा तो ये लो और वो दो, पर उठेंगे नहीं हम। झुक जाना, रेजिलियंस, मोल्ड कर देना स्वयं को। धारणाओं में स्थिर रहना अलग बात है, पर यहां बात कर रही है लचीलापन, व्यक्तित्व में लचीलापन हो। ऐसा नहीं हमको तो बस ऐसा ही चाहिए, हमको तो एसी कमरा ही चाहिए, एसी नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको तो ऐसी चाहिए बस में हम नहीं जाएंगे, पकड़ के रखा है कोई कोई चीजों को, साधनों को। नेक्स्ट, इनर यूनिटी एंड लव आए, अर्थात आंतरिक एकता हो और आंतरिक प्रेम हो सबके लिए। यह होगा तब, वैसे ही नहीं होगा। जितना बीच से कनेक्शन हमारा होगा उतना ही इस विस्तार से कनेक्शन होगा। जितना बीच से प्यार कम, इस विस्तार से भी सहयोग कम और इस विस्तार से प्रेम कम। कोई लोग कहते हैं कोई हमको सहारा नहीं देते, सहयोग नहीं देते। ब्राह्मण बिल्कुल सहयोगी नहीं है। क्यों सहयोगी नहीं है? कोई कहते हैं ना हमको ये ब्राह्मण बहुत सहयोग नहीं देते, हम बीमार हैं, कोई आता नहीं। कहता है नहीं, हम हिसाब किताब नहीं बनाना चाहते, तुम्हारा कर्म भोग है भोगो। सहयोग, जितना हमारा कनेक्शन उससे होगा परमात्मा से, जितना प्यार होगा, पत्तों से सहयोग स्वतः मिलेगा। पत्तों से सहयोग नहीं मिल रहा है, काम पत्तों पर नहीं करना है, ऊपर करना है, बीज के साथ करना है। ये बीज से प्यार कम है इसलिए पत्ते भी सहयोग कम दे रहे हैं। बीज के सहयोगी हम कम बन रहे हैं इसके लिए पत्ते भी हमें सहयोग कम दे रहे हैं। रिकनेक्ट विद द सीड एंड द लीव्स विल कोऑपरेट। एन फॉर नो जेलसी, नो रेसिंग, रीस नहीं, जेलसी नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, आपस में गिराने की भावना नहीं। नो नो नो, उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं किस चीज में नो करना है इस संगठन में। परचिंतन नो, परदर्शन नो, परमत नो, ये सारी चीजों को नो कर देना है, नो कर देना है। लास्ट जी अर्थात गुड मैनर्स, जी अर्थात गुड मैनर्स। कौन कौन से गुड मैनर्स? इस ब्राह्मण परिवार में कौन से गुड मैनर्स होने चाहिए? सुबह से चालू करो तो रात तक गुड मैनर्स। ऐसा ना हो कि दूसरे का इनके मैनर्स बहुत ही अच्छे नहीं है। गुड मैनर्स, 25 गुड मैनर्स बताओ। हम नहीं बताएंगे, आप बोलना चालू करो। श्रीमत नहीं बतानी है, बड़े बड़े मीठा बोलना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो नहीं। कुछ गहरी बातें बताओ। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा मैनर्स है। हमको टाइम दिया है 3 बजे आने का, हमेशा ही हमारे 3:30 बज ही जाता है। एक चर्च था, उस चर्च में चर्च का जो पादरी था बूढ़ा हो गया था। आज उसका अंतिम दिवस था, फेयरवेल पार्टी थी। 60 साल तक वो उस चर्च में रहा। गांव में एकमात्र चर्च था, तो गांव के जो मेयर साहब थे उनको बुलाया था फेयरवेल फंक्शन के लिए, चीफ गेस्ट। परंतु मेयर साहब जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं, तो क्या करें। इसके लिए वो पादरी कहते हैं चलो मैं ही अपना भाषण चालू कर देता हूं, तब तक आ जाएंगे वो चीफ गेस्ट। तो वो बोलना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है मेरा वो पहला दिन जब मैं इस गांव में आया था। बहुत युवा था मैं, और मेरे पास एक पहले ही दिन एक युवक आया, और क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन होता है, अपने सारे पापों को कबूल करते हैं वो धर्मगुरु के सामने या पादरी के सामने कन्फेशन। तो ऐसा एक युवक आया, युवक या थोड़ा सा 40 वर्ष का होगा, और उसने ऐसे ऐसे पाप गिनाए, मैं तो शॉक हो गया कि एक व्यक्ति इतने पाप कर सकता है और मैं ये किस गांव में आ गया। ऐसा गांव जिसमें इतना बड़ा पापी है, ऐसा कोई भी विकर्म नहीं, पाप नहीं जो इस व्यक्ति ने नहीं किया। वो कहता है बाप रे, इस गांव में तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। परंतु वो कहता है धन्यवाद, वो पहला दिन ही आया, बाद में इतने 60 साल में कभी कोई ऐसा नहीं आया। प्रभु का बहुत शुक्र है, पहले दिन आया था बस। ये उसका भाषण चालू रहता, तब तक मेयर साहब आ जाते लेट। तो मेयर साहब को अपना भाषण चालू करते हैं। वो कहते हैं ये पादरी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अच्छी अच्छी सेवाएं की। आज मुझे एक अपने जीवन का प्रसंग याद आ रहा है, मुझे लगता है मैं ही वो पहला व्यक्ति था जब ये यहां आए थे, मैं ही इनके पास आया था। बाद में तो आपको पता ही है मैंने कितनी कितनी सेवाएं की, गांव में सड़क बनवाए, ये किए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था वो। पर वो क्या कह देता है मैं ही वो पहला था जो इनके पास कन्फेशन करने आया था। पकड़ा गया ना? क्यों? पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी नहीं। माताओं को कहा तीन तो तीन, आज की यहां तो माता है बिल्कुल, अभी कितने बजे का टाइम दिया था? पांच। तो माता है तो एकदम तैयार थी, अगर दरवाजा न खुलते तो टूट भी सकता था आज, इसलिए हमने तुरंत तुरंत कुमारियों को पूरा कर दिया, क्योंकि दरवाजे के हिलने की आवाज आ रही थी जोर जोर से। तो पहला गुड मैनर्स है पंक्चुअलिटी, दूसरा ये जो हो गया है ये छोड़कर, गुड मैनर्स अर्थात वो सारी बातें बताओ जो दिनचर्या की है, जीवन रोजमर्रा की जीवन की। गुण नहीं बताना है गुण नहीं बताना है, वो जो दिव्य गुणों की लिस्ट है 36 वो छोड़ के वो नहीं बताओ। काइंडनेस ये सब दिव्य गुण है, वो नहीं, गुड मैनर्स पूछ रहे हम। हाँ हाँ, ऐसे आना, योग का कमरा है, एंट्री ऐसे की कि जोर से दरवाजा खोला, अंदर ऐसे बैठे, बैठने से पहले एक पॉलिथीन हाथ में है, उसका आवाज चुंग 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 चुंग, फिर उसमें से निकाला कुछ, पॉलिथीन का आवाज, बैठने धड़ाम, बाजू वाला बैठने हिल जाता है, हम इधर बैठे वो उधर हिल रहा है, इतना जोर से बैठ जाना चेयर पर, चेयर में बैठते समय आवाज करना, पॉलिथीन की आवाज करना, खिड़की खोलनी है तो जोर से खिड़की खोलना, सब लोग मुड़ के देखे कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। चप्पल निकालना तो जोर से चप्पल निकालना, चलना ठप 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 आवाज, जोर से हंसना। तो बाबा कहते थे मम्मा ऐसी चलती है कि धरती भी मम्मा से प्यार करती है, इतना धीरे, उन चप्पलों की भी आवाज नहीं, वो गुड मैनर्स नहीं है। टेबल मैनर्स क्या क्या है? टेबल मैनर्स आवाज, पी ऐसे रहे हैं कि सब लोग देख रहे क्या पी रहा है क्या पी रहा है, इतनी आवाज के साथ, एक है धीरे धीरे चबा चबा के कचड़ 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 कचड़, धीरे धीरे आवाज ना हो चाय पीने की, ऐसे कोई पीते, कोई लोग ऐसे पकड़ के चावल को खाते हैं, वो साउथ में ऐसे बहुत करते हैं, धीरे धीरे आवाज ना हो, कोई लोग चम्मच बहुत पटक पटक के गुस्से गुस्से में खाते हैं। टेबल मैनर्स, और टेबल मैनर्स में खा रहे हैं और पूरा अपने कपड़े को भी खिला रहे हैं, सर्व अदर्स, इतना नहीं ले लो कि बाद में झूठा छोड़ना पड़े। मधुबन में हम देखते हैं वो थालियां, ग्रुप्स आते हैं, इतना ले लेते पता नहीं जैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा डालो 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 और बाद में सारा कुछ फेंक देते हैं, जितना जो चीज पता नहीं ये नहीं है वो इतना सी लो, बहुत ले लिया क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छी सुगंध आ रही और बाद में पसंद ही नहीं आया, क्या करेंगे फेंक दो। क्या ये गुड मैनर्स है? यज्ञ का कणा कणा मोहर के समान है, ये दुख भंजक भोजन है। 87 अव्यक्त वाणी, दुख भंजक भोजन है ये, भोजन को वेस्ट कर देना, जितना चाहिए उतना ही थाली में लो, वेस्ट ना हो वो। गुड मैनर्स, लाइट, कोई नहीं है लाइट चालू है, हम सोचे हम क्यों बंद करें, हमारे घर में हम ऐसे करते क्या? मधुबन में ऐसे करते हैं, पर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पानी बहा जा रहा है, ये तो चलो इकोनॉमी की बात है, और गुड मैनर्स में हाँ आते आते खाते समय इतना बात इतना बात इतना बात इतना बात, याद में नहीं खा रहे, बातें ही चालू है, इधर उधर की बातें, सिनेमा की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, मौसम की बातें, व्यर्थ की बातें, ये भी मैनर्स नहीं है। अगला क्लास चालू है, भट्टी चालू है, आज भी बजे कई लोगों के मोबाइल, मधुबन में बहुत बजते हैं, मुरली चालू है, योग चालू है, अचानक मोबाइल बजता है किसी माता का, पहले तो उसे यही नहीं पता चलता है कि मेरा बज रहा है, फिर दूसरे उसको याद दिलाते हैं माताजी फोन, फिर वो अपनी पर्स उठाती है, स्टेप वन, फिर फर्स्ट चेंज उसमें नहीं है, दूसरा खाना उसमें भी नहीं है, फिर थर्ड चेन, वो चेन की आवाज पूरा मेडिटेशन हॉल में सुनाई दे रही है सबको, एक चेन खोली, फिर दूसरी चेन, फिर तीसरी, फिर मोबाइल हाथ में, आप करना क्या है, बटन कहाँ है, और वो बटन नहीं, उसको खाली दो ही चीजें पता है, हेलो कहना, तो वो बटन कोई ऑन करके दिया और फिर हेलो वहीं से बोलना चालू, योग चालू है, सब योग में है, वहीं से योग में बात करते करते बाहर, और बात करते करते उसको डांट भी रही है, अभी फोन क्यों किया। यदि इसको ऑपरेट करना नहीं आता है तो पहले सीख लो कैसे ऑपरेट करना है, कैसे साइलेंट पे रखना है, कैसे वाइब्रेशन पे रखना है, कैसे क्या करना है, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से। फोन मैनर्स, टेबल मैनर्स, बाथरूम रिचुअल, बाथरूम में गए और सारे बेसिन में बाल ही बाल, और मैनर्स पोलाइटनेस, वो चलो वो भी एक है बोलने का, और हो गया, और किचन मैनर्स, किचन मैनर्स, दादी जान की अगर किसी के घर जाते थे पहले तो सबसे पहले किचन में जाके देखते थे किचन में कितनी स्वच्छता है, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, भंडारा भंडारी स्वच्छता हो वहां पर। हिंदी में कहावत है रात में बर्तन अगर ऐसे ही झूठे छोड़ दिए जाए तो रात भर रोते हैं बर्तन, साफ करके नहीं छोड़ो उसको तो क्या करते हैं वो, रोते हैं रात भर। स्वच्छता किचन में कितनी है, वो जो पुराने जमाने में भोजन बनाते थे उनको क्या कहते हैं, महाराज, भोजन बनाने वालों को क्या कहते हैं, महाराज, किसी को आने नहीं देते अंदर, वो जो उनके वस्त्र भी होते हैं उसमें सिलाई नहीं होती, एक ही वस्त्र पहनेंगे पूरा, महाराज लोग जो होते हैं ना जो शादियों में या बड़े बड़े इसमें भोजन बनाते हैं उनका वो एरिया होता है, महाराज अर्थात इंद्रिय जीत की निशानी है वो, पहले ऐसा था, अब के महाराज तो अलग है। किचन के मैनर्स, शूज के मैनर्स, क्लोथ्स के मैनर्स, ऐसे उत्तेजक और भड़काऊ ड्रेस जिससे दूसरों को आकर्षित हो जाए हमारी तरफ। विनोबा भावे एक बार भूदान यज्ञ या सर्वोदया मूवमेंट के जो बुधा विनोबा भावे थे वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, कुछ स्त्रियां वहां पर बैठी थी, युवा स्त्रियां गजरा लगाए हुए, उन्होंने पूछा ये गजरा तुमको दिखाई देता है क्या, उसने कहा नहीं, तो क्यों लगाए, पीछे लगता है ना, किस लिए लगाया, खुद को तो दिखता ही नहीं है तो किस लिए लगा रही है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए ऐसे भड़काऊ ड्रेस, ऐसा मेकअप गुड मैनर्स में नहीं आता है, एटलीस्ट ब्राह्मीन मैनर्स में तो नहीं आता है, इस ब्राह्मणों के मैनर्स में नहीं आता है। और क्या क्या एनवायरमेंट, चॉकलेट खाया बस से बाहर, रैपर पॉलिथीन कुछ लपेटा कार से बाहर फेंक दिया, एनवायरमेंटल वेस्ट, पर्यावरण को अशुद्ध कर रहे, कहीं पिकनिक मनाने गए सब गंदा करके वापस, ये अन मैनर्स है। दूसरे बाहर वाले आके समझाए, अरे तुम लोग कौन हो, ब्रह्मा कुमारी वाले हो, चलो ये ठीक करो, अच्छा लगेगा, दूषित करना वातावरण को। चॉकलेट खाया रैपर्स अपनी बैग में डालो, पॉलिथीन बाहर नहीं अपनी बैग में, ये भी मैनर्स में नहीं आता है। और मैनर्स, दूसरा बोल रहा है उसकी बात बीच में काट देना, मैनर्स ऑफ टॉकिंग, दूसरा बोल रहा है उसको सुनना ही नहीं, अपनी ही बात बोलते रहना, आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मैनर्स, टेबल मैनर्स, रिचुअल्स, बाथरूम रिचुअल्स, टाइम मैनर्स, सब मैनर्स 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 में सारी चीजें आती है। इस संगठन में गुड मैनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें नहीं पता कोई चीज तो पूछना है। मधुबन में जाने के बाद के मैनर्स, वहां क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारी टोटल 10 बातें हैं। संगठन को एकजुट, एक और एक 11 बनाने की, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, ब्लेम गेम बंद करना। दूसरा, एप्रिसिएशन। तीसरा, ट्रस्ट। चौथा, ऑनेस्टी। पांचवा, एनकरेजिंग अदर्स। छठवा, रिस्पेक्ट। सेवेंथ, रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी। अगला, इनर यूनिटी एंड इनर लव। और लास्ट, नो रेसिंग, नो जेलसी, नो कॉम्पिटिशन, नो परचिंतन, नो परदर्शन। नेक्स्ट, गुड मैनर्स धारण करने हैं। तो अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।